हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारू अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम शशंससी यस् श्रेयः एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जब कोई शिक्षा दी जाती है तो व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार उसको ग्रहण करता है। भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश नहीं दिया कि वो एक जगह बैठे और केवल ध्यान करता रहे और कुछ कार्य न करे, लेकिन अर्जुन सेकंड अध्याय में जब भगवान ने शांति के बारे में बात किया है तो ऐसा उनको प्रतीत होने लगा कि, या ज्ञान के बारे में जैसे चर्चा किया चौथे अध्याय में, तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि ज्ञान जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, जो कि है भी, लेकिन इसका अर्थ ये हो गया कि हमें ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और कर्म हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली भगवान ऐसा नहीं कह रहे थे। भगवान ने चौथे अध्याय के अंत में बोला, हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां समझना चाहिए चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक से कि अर्जुन अपने असली कर्तव्य कृष्ण के अंश के रूप में जो उनका ज्ञान जनित हो गया था भगवान की इच्छा से हुआ था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इस कारण से वो पाप और पुण्य का विचार कर रहे थे। इस कारण से वो सोच रहे थे कि अगर युद्ध करते हैं तो वो अपना उनको कर्म बंधन लगेगा और इस कारण से वो युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब बोल रहे हैं भगवान योग से युक्त हो तो इसका अर्थ ये है कि इस भावना से भावित हो कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं ये युद्ध नहीं कर रहा हूँ बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा हूँ, और इसमें पराजय और जय, पाप और पुण्य, लाभ और हानि का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जीवन की सार्थकता यही है कि हम कृष्ण की सेवा करें। सेवा का फल सेवा ही है। सेवा का फल लाभ हानि के रूप में नहीं होता जैसा कि हम भौतिक जगत में देखते हैं। तो इस प्रकार के संशयों का जब निवारण हो जाता है तो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उत्साह के लिए उत्साहित हो जाता है। और इसी बात को भगवान यहाँ बोल रहे हैं। अब पांचवें अध्याय को शुरू करते हुए अर्जुन भी प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे कर्म त्याग देने चाहिए या कृष्ण भावना भावित करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है? तात्पर्य देखिए, भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। देखिए, जब हम लोगों को प्रचार करते हैं कि हम लोग शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूम में बैठ जाएं और बस हम खाली यही सोचते रहें कि इस प्रकार से हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये ज्ञान योग की पद्धति है। लेकिन भगवान की भक्ति में व्यक्ति कार्य करता है भगवान के लिए, और जब वो कार्य कृष्ण के लिए होते हैं तो अपने आप ही उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा व्यक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भक्ति पथ सुगम क्यों है ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। भक्ति पथ में क्रियाशीलता को रोका नहीं जाता है बल्कि क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उस क्रिया को भगवान के ज्ञान से समन्वित किया जाता है। जैसे ये नहीं बोला था कि खाओ मत, अभी तो भगवान का प्रसाद खाओ। ये नहीं बोला था कि चुपचाप रहो, 6 महीने तक बोलो मत, अभी तो भगवान के बारे में अधिक से अधिक बोलो। तो आप देख सकते हैं आत्मा स्वरूप से ही क्रियाशील है, तो इस कारण से क्रियाशील कार्य कोई हो, योग पद्धति हो, तो वो आत्मा के लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर केवल बोला जाए कि आप कुछ बोलिए मत, कुछ देखिए मत, कुछ सुनिए मत, तो ये आत्मा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कि योग पद्धति होती है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ज्ञान योग पद्धति होती है जिसमें इंद्रियों के कार्य को रोक करके उनको अंदर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करें। एक विनोद की बात है, मैं लखनऊ में क्लास दे रहा था और मैं चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, जो दुखी होता है, जो धन की आशा लेके आता है, जिज्ञासु होता है और ज्ञानी होता है। तो एक व्यक्ति क्लास के बीच में आए थे और पूरा क्लास नहीं सुन पाए, तो बोले क्या ज्ञान के बाद भी भगवान की सेवा की आवश्यकता होती है? तो लोग सोचते हैं कि ज्ञान जब तक हमें ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बस तभी तक हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है, पूजा करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। जब ये ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो उसके बाद हम सेवा बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान इस बात को बोलते हैं अगले श्लोक में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो सच्चा ज्ञानी है वो नित्य युक्त रहता है, वो समझता है कि मेरी स्थिति शाश्वत दास के रूप में है भगवान की। जितना उसको अधिक ज्ञान होता है, उतना ही सेवा का उत्साह, उतना ही भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति निठल्ला बैठा रहे। तो ये इस बात को भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के युद्ध करो। युद्ध तो अर्जुन पहले भी करते हैं, गीता के पहले और गीता के बाद भी किया, अंतर था पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर भक्ति भावना से उन्होंने युद्ध किया। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। और बहुत बार लोग हमसे भी ऐसा बोलते हैं, ये भक्तों ब्रह्मचारियों को बोलते हैं, आपने तो जगत छोड़ दिया है, जगत से संन्यास ले लिया है। लेकिन एक्चुअली गलत है। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय एक स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूँ, इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस क्लास को व्हाट्सएप के माध्यम से भक्तों के पास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम प्रचार करके आए हैं, तुम गाड़ी से गए थे, पानी गर्म करने के लिए हम बॉयलर का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक क्रियाओं को सामान्य रूप से नहीं कर रहे हैं, बट उनको करने का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना हो जाता है। तो यानी कि असली संन्यास का अर्थ कर्म से संन्यास लेना नहीं है, बल्कि कर्म में संन्यास लेना है। क्या मतलब है इसका? कर्म से संन्यास लेने का मतलब है जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमको भक्ति में क्रिया करनी है या वेदों के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है, उनको त्याग देना। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्तव्य हैं, ये ब्रह्मचारी संन्यासी गृहस्थ वानप्रस्थ के कर्तव्य, उनको त्याग देना। लेकिन कर्म में संन्यास का अर्थ है कि उन क्रियाओं को, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, पत्नी की हो, बच्चे की हो, किसी की भी हो, उनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने की ट्रेनिंग को प्राप्त करना और उनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। जैसे एक पत्नी की कर्तव्य है पति की सेवा करना, तो ये लौकिक धर्म है और पालन करना चाहिए। लेकिन अगर वो पति के लिए प्रसाद बनाती हैं, भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पति को देती हैं, तो ये भागवत धर्म हो जाता है। इसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हम अपना सामाजिक कर्तव्य भी करते हैं। हम लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उसको त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद वितरण करिए। हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवद गीता को सीखिए, भगवद गीता के ज्ञान प्रमाणिक रूप से लोगों को दीजिए। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्मों को नहीं त्यागना है, उन कर्मों को कृष्ण को करने की आर्ट को सीखना है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। मतलब उनका कहने का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है वही कर्म करेगा। जो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, बस वही कर्म करेगा, और जिस व्यक्ति को पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, वो काय को कर्म करने लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम केवल शरीर नहीं है ऐसा नहीं है, हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन साथ साथ हम भगवान के नित्य अंश हैं और इस समय हम शरीर में हैं, इसलिए हमें कार्य तो करना है। लेकिन उस कैसे उस कार्य को करें ताकि हम लोग मदे नहीं, जिस प्रकार से उदाहरण आप जानते हो, दही दूध अधिक पीने से पेट खराब होता है और वही दूध से बनी हुई वस्तुएं दही हमको ठीक कर देती है। तो इसी को भागवत में बोला गया है ब्रह्म कर्मणि भावितम, यदीश्वरे भगवती ब्रह्म कर्मणि भागवतम भावितम। तो अगर भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने कर्मों को, मन से, वचन से और शरीर से होने वाले कर्मों को, तो वही कर्म हमको मुक्त करने का कारण बन जाते हैं। और अगर वही कर्म अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो हम बंध जाते हैं। तो इसलिए अगर ज्ञान से युक्त हो व्यक्ति तो उसे अपने कर्मों को रोकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक कर्मों में लगना है, लेकिन वो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधन ना बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार के से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार का संशय गुरु के सामने प्रस्तुत करना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है और अपने टीचर से आप पूछते हो तो उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। देखिए, अर्जुन ने ये संशय जो पूछा है ये पूरे जगत को मालूम चल गया, तो क्या इससे अर्जुन कम हो गए या उनकी स्थिति खराब हो गई? नहीं। हमको अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछने का अधिकार है, लेकिन नम्रता से पूछना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं, तो उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो भगवान क्या उत्तर देंगे इसकी चर्चा हम आगे के श्लोकों में करेंगे। हरे कृष्णा।